सूरत अल हज। चलिए तफसीर देखते हैं आयत नंबर 65 से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पीछे वाली आयात ही की कंटिन्यूएशन है। अल्लाह ताला की कुदरतों का इजहार था कि किस तरीके से वो कायनात के अंदर चीज़ों को फैलाता है। तो क्या वो तुम्हारी मदद नहीं कर सकता? क्या वो तुम्हारे दुश्मनों पे गालिब नहीं आ सकता? अलम तर अन्नल्लाह सख्खर लकुम मा फिल अर्दी वल फुल्क तजरी फिल बहरी बि अम्रिही। क्या आपने नहीं देखा कि अल्लाह ने फरमा बरदार बना दिया है तुम्हारे लिए हर उस चीज़ को जो ज़मीन में है? कुदरत, हुकूमत, हर चीज़ उसने तुम्हारे हाथ में दे दी। क्या फिर वो तुम्हारे दुश्मनों को भी मुसख़र नहीं कर सकता? क्यों सोचते हो कि तुम अल्लाह को पीछे डालकर अपने बदले खुद ले लोगे? इसलिए उसी की कुदरतों पे गौर करो। वल फुल्क तजरी फिल बहरी बि अम्रिही, और कश्ती भी चलती है समंदर में इसके हुक्म से। यानी नामुमकिनात को मुमकिन बनाने वाली ज़ात तुम्हारे काम भी कर देगी। तुम उस पर पूरा यकीन रखो, वो सब कुछ करके तुम्हारे लिए रखेगी। وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ, और उसने थामा हुआ है आसमान को कि ना गिर पड़े ज़मीन पर सिवाय उसके हुक्म के। इतना बड़ा आसमान जिसने थामा हुआ है, क्या फिर वो तुम्हारे दुश्मन से तुम्हें नहीं बचा सकता? إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ, और बेशक अल्लाह ताला लोगों के साथ बड़ी मेहरबानी फरमाने वाला, ज़बरदस्त रहम फरमाने वाला। बिल्कुल आप देखिए कि अपनी तफसीर आप हैं आयतें। सिर्फ निगाह डालते जाएं इबरत की और अल्लाह की कुदरतों पे यकीन रखते हुए इंसान कहता रहे जी अल्लाह, जी अल्लाह, हाँ अल्लाह, आप जो कहते हैं सच है। मुझे यकीन है कि मेरा जो काम आप करेंगे वो मैं खुद अपना काम नहीं कर सकूंगी। ये तक़ा का लफ्ज़ है, ये वाव काफ़ाइन रूट है, कहीं ता काफ़ाइन ना लिख दीजिएगा। वही लफ्ज़ है जो वकू, वाक़िया, व इज़ा, वक़ातिल, वाक़िया में आता है, गिर पड़ने के मानों में। इधर वहुवल्लज़ी अहयाकुम, वही तो है जिसने तुमको ज़िंदगी दी, जिसने इतना कुछ बनाया, ज़िंदगी भी तो उसी ने दी। सुम्म युमीतुकुम, फिर तुमको मारेगा। सुम्म युहीकुम, फिर तुमको ज़िंदा करेगा। इन्नल इंसान लकफूर, लेकिन इंसान बेशक बड़ा नाशुक्र है। ज़िंदगी और मौत के लिए जिसको देखता है उसी पे अपने काम नहीं डालता। अब देखें कि हम आए अपनी मर्ज़ी से नहीं, जाएंगे अपनी मर्ज़ी से नहीं। अल्लाह ना चाहता कायनात में इतनी खूबसूरती होती, हम इतने मुकम्मल इंसान होते। जिस्म, कान, टांगें, आंखें, हाथ कैसे चलती हैं, और सब चल रही होती हैं, और एकदम कुन लगता है और सब कुछ ख़त्म हो जाता है। चलती हुई मशीनें रुक जाती हैं, तो क्या फिर इंसान गौर नहीं करता? तो अकलमंद वो है जो मौत और हयात के इस निज़ाम को समझे और ثُمَّ يُحْيِيكُمْ पे नज़र रखे। लेकिन लोग इस दुनिया में तो अल्लाह की कुदरतों पे बड़ा यकीन रखते हैं, लेकिन आखरत के बारे में नहीं सोचते। फितरत का तकाजा तो ये था कि इतनी नेमतें देने वाले और इतने बड़े मुहसिन की चौखट पर हर वक्त सर झुका दे, ज़ुबान और दिल से उसका शुक्र अदा करे, अमल करे इंसान उसकी रज़ा के। लेकिन इन्नल इंसान न लकफूर, न शुक्रा इंसान है। इसीलिए अब इस न शुक्र इंसान को शुक्रगुजार इंसान बनाने के लिए कुछ काम करने की दावत दी जा रही है। क्या? लिकुल्ली उम्मतिन जालना मनसकन, हर उम्मत के लिए हमने मुकर्रर कर दिया इबादत का तरीका। मनसक का लफ्ज़ इस सूरत में बार बार आ रहा है। नुसुक, नसीका, पीछे बात हो चुकी। हज के तरीके या कुर्बानी या मनासिक, जो भी इबादत के तरीके हैं अल्लाह ताला ने बता दिए, हमने दिए। इसे पता क्या चलता है कि इबादत के तरीके ईजाद करने वाली चीज़ नहीं है, मानने वाली चीज़ है। असल बात देखिए इताअत की है। आज के दौर में अगर कोई भी नेकी का काम करें और पूछें कि भाई क्यों करा, किसने किया, अल्लाह के नबी ने किया, सहाबा ने किया, तो लोग कहते हैं क्या हर्ज है। तो यहाँ आयत में जवाब लिखा हुआ है कि हर्ज ये है कि मनसक इंसान नहीं बनाता, अल्लाह बनाता है। ये मनसक क्या है? मफ़अल, मफूल है ना, इसम मफूल। मनसिक होगा तो इसम मफाइल बन जाएगा। सिर्फ सा की ज़बर और ज़ेर से मानी बदल रहा है। हम नासिकू, वो इसकी तरफ चलने वाले। नासिकून कौन है? ये असल में लफ्ज़ ना से कून था, मुजाफ हुआ तो हु लग गया और नून गिर गया। किससे लफ्ज़ निकला ना से कू? नसा का। उस शेख ने इबादत की, कुर्बानी दी, तो उसी से नासिक फाइल। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ग्रामर के साथ खेलते जाएंगे तो इंजॉय करेंगे, ना समझ आए तो कोई बात नहीं, लेकिन समझ आ जाए तो खुशी ज़्यादा होगी। कि हर बंदा अपनी इबादत के तरीके को बजा लाने वाला है। फला युनाज़िउन्नक फिल अम्री, तो इनको चाहिए कि वो झगड़ा ना करें आपसे इस मामले में। किस मामले में? दीन के मामले में, तबलीग के मामले में। जो दीन के तरीके आपने सिखा दिया, अब इस पे बहस ना करें। हज और उम्रे के जो रिचुअल्स हैं उसको मान लें। क्यों कहते हैं कि आज के दौर में ऐसा नहीं और वैसा नहीं, ये नहीं और वो नहीं? अल्लाह के नबी सल्लम वही शरीयत लेकर आए जो पिछले अंबिया के पास थी। कभी कोई एक हुक्म आता, फिर उसके बाद बदल दिया जाता। तो इनको करना क्या चाहिए? नबी की इताअत करें, मान जाए। देखिए, असल बात मानने की है। आप और मैं दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं। ये नमाज क्या है? कुछ भी तो नहीं। वही नमाज हम उसके बाद वाले औकात में अपनी मर्जी से पढ़ें तो गुना होगा, लेकिन जोहर पे आपने 4 फर्ज पढ़े तो अजर हुआ, 6 पढ़ेंगे तो गुना है। असल बात क्या है? हम ना से कू मानने का अजर है। असल दीन जो है ना, वो इताअत का नाम है। दीन लफ्ज़ के अंदर भी लफ्ज़ इताअत आता है, कि असल बात यह है कि बंदा रब की कितनी मानता है। अब नमाज के वक्त में तो माने और अमल के वक्त में छोड़ दें तो फिर बात नहीं बनेगी ना। तो लिहाजा दीन के मामलात में, इबादत के मामलात में इनसे मत झगड़ा करें। अगर वो झगड़ते हैं तो गलती करते हैं। आप इनके झगड़ों को एक तरफ डाल दें, वदु इला रब्बिक, और आप इनको बुलाते रहें अपने रब की तरफ। इनका भी रब है जैसे आपका रब है, इसलिए आप इनकी इन बातों को जहन में ना रखिए, अपना काम करते रहें। देखिए, अल्लाह के नबी सल्लम जो दीन लेकर आए थे ना, वो मक्का वालों के बाप दादा के दीन से टकराता था। थे वो मुसलमान लेकिन बिगड़े हुए थे। वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के की नस्ल में से, लेकिन उनकी तालीमात से बिल्कुल दूर थे। नसब नाता जोड़ते थे हज़रत इब्राहिम से, लेकिन हज़रत इब्राहिम की आदात और उनके अकायद से दूर का भी ताल्लुक़ नहीं था। अब जब अल्लाह के नबी सल्लम ने उनको एक साफ़ सुथरा दीन दिया, जिसमें बुतों की और बुज़ुर्गों की बड़ाई को एक साइड पर करके अल्लाह की बड़ाई की बात की गई, तो झगड़े शुरू हो गए। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं, इनको झगड़ने दें, आप इनको बुलाते रहें। कहाँ बुलाएं? वदु इला रब्बिक, रब की तरफ बुलाएं। आखिरी आयतों में बात होगी इसमें कि असल दावत जो है वो रब की तरफ बुलाना है। जमात या गिरोह या मसलक या जमात या इदारा या उस्ताद या फलाह नहीं है। हमारी नस्बत इंसानों से नहीं जुड़ी हुई। अल्लाह की तरफ बुलाओ लोगों को, खुश हुआ करो को लोगों को देख कर कि वो अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं। ये ना कहा करो कि इसलिए खुश होंगे कि हमारे मसलक की तरफ बुला रहे हैं, हमारी जमात की तरफ बुला रहे हैं। इन्नकल अला खुदम मुस्तकीम, और आप बेशक सीधी रास्ते पर हैं। आप गम ना करें, आपको अल्लाह ने बिल्कुल सीधी राह दी है। देखिए, जब बहुत सारी मुखालफत होती है ना, तो शक आने लगता है। इसको तो कई ऐसे साथी जानते होंगे कि जो सीखते हैं, लेकिन घर वालों का माहौल थोड़ा फ़र्क है। कई दफ़ा शक आता होगा, पता नहीं कोई हमारी ब्रेन स्टॉर्मिंग तो नहीं कर रहा, कोई हमारी ब्रेन वॉशिंग तो नहीं कर रहा, पता नहीं ये हमारा मसलक तो नहीं बदल रही। मैं सोचती हूँ कि मसलक तो आया ही नहीं अभी कुरान में। अभी तो हम सिर्फ अल्लाह का कुर्ब पा रहे हैं, अभी तो इबादत को देख रहे हैं, अभी तो हम अपनी मौत को याद कर रहे हैं, अभी हशर को जान रहे हैं। कहाँ है पूरे कुरान में फिक की बातें? कितने को इख्तलाफी मसले हैं पूरे कुरान में। आप ख़ुद भी देखें कि जब से हम कुरान पढ़ रहे हैं, आज अगर हम सबक 170 कर रहे हैं, तो चले 170 सबक हुए, इतने दिन कर लें अपने, इन 170 दिनों में कितनी दफ़ा इख्तलाफी बातें हुई, कितनी दफ़ा कज़ा उमरी की बात हुई, कितनी दफ़ा औरत मर्द की नमाज का फ़र्क हुआ, कितनी दफ़ा रफुल जदैन का हुआ? आटे में नमक के बराबर, याद भी नहीं। लेकिन ये जिक्र कितनी दफ़ा होता है कि अल्लाह का कुर्ब, इखलास, मोहब्बत, क्या जिक्र आता है ज़्यादा कुरान में? अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के बन जाओ। लेकिन बाज़ लोग सिर्फ इतनी छोटी छोटी बातों को दलील बना के, जो बेदलील बात होती है, अल्लाह से कट जाते हैं। मैं कहती हूँ, कुरान का तर्जमा याद करते हैं, इसमें क्या मसलक है? अल्लाह का कुरान है, जैसे आपने साइंस पढ़ी है ऐसे आप कुरान पढ़ लें अरबी में, इसमें क्या इख्तलाफ है? लेकिन फला युनाज़िउन्नक फ़िल अम्री, अल्लाह के नबी से भी ये झगड़े थे। आप देखिए, अल्लाह के नबी की सीरत को आप पढ़े ना, तो आपको कभी भी अल्लाह के नबी लोगों को एक्सप्लॉयट करते हुए नहीं दिखे। छोड़ दो लात को, छोड़ दो मनात को, आग में जाओगे, ये कोई स्टाइल नहीं था ऐसा। सीधी सीधी बातें करते जाते थे, दिल खुलते थे, लोग मान जाते थे। जो लोग अल्लाह के नबी की बात सुन रहे होते थे उनके दिल खुल जाते थे, लेकिन जो दूसरे नहीं सुन रहे होते थे उनके प्रेशर में आके कभी कभी फिर वो डाउटेड होते थे। तो अल्लाह ताला कहते हैं इनको छोड़ें और आप बिल्कुल गलत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे ये जो बात अल्लाह ताला की इधर नबी सल्लम के लिए ना कि आप बिल्कुल सीधी रास्ते पे हैं, हर कुरान पढ़ाने वाला भी खुद से ये पूछता है। अल्लाह का शुक्र है मैं बड़ी बात नहीं कर रही, अब कभी भी ये ख्याल नहीं आता। जब मैंने शुरू में पढ़ाना शुरू किया, देखिए जब बंदा पहली दफ़ा पढ़ता है तो वो बस आप जैसे आप हैं, काफ़ी लोग जो पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं बिल्कुल, आप जब दोबारा पढ़ेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि पहली दफ़ा आप क्या थे, होश ही नहीं होती। सोच रहे होते हैं तो लिखना पड़ता है, लिख रहे होते हैं तो बात करने को दिल चाह रहा होता है, वो हज़ारों ख्वाहिशें दिल में ही रह के आप उठ के चले जाते हैं। हाथ खड़ा करना चाहते हैं हाथ नहीं खड़ा हो रहा, बताना चाह रहे हैं बता नहीं रहे, बता रहे हैं तो समझा नहीं पा रहे। पहली दफ़ा का कुरान बस उलथम पुलथम, आपके दिल की मट्टी उलझ रही है, सिर्फ गोडी हो रही है आपके दिल की, कुछ हवा जा रही है, ऑक्सीजन जा रही है, कुछ इल्म जा रहा है, कुछ 10 बातों में एक आयत समझ भी आ जाती है, कुछ अमल भी आता है, कभी आंसू आ गए कभी हंस पड़े, दूसरी बार पढ़ते हैं ना फिर आता है। तो मुझे अच्छी तरह इस आयत को पढ़ के जो मुझे अपनी पुरानी फीलिंग्स याद आ गई, बहुत अल्लाह ताला जब चाहे, पहले की बात आती है कि मैंने जब पहली दफ़ा पढ़ाना शुरू किया तो मेरे दिल में इस चीज़ का बड़ा गुमान था, क्योंकि पहली दफ़ा किया हुआ काम समझ भी नहीं आता कि सही है कि नहीं, तो मुझे बड़ा ये आता था कि सही भी है कि नहीं, मैंने सही पढ़ा है तभी पढ़ाऊँ, गलत तो नहीं पढ़ा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला बचाए और मुझे अपना इख्तिसाब करने की तौफीक दे। अब कभी ये फीलिंग, आप जैसे मैं आपको पढ़ाती हूँ ना, मुझे नहीं पता जो बात आप मेरी ज़ुबान से सुनते हैं या आपको दलाइल दी आपके दिल में कितने को शक आते हैं, लेकिन ये मैं कह सकती हूँ कि मेरे दिल में कोई शक नहीं आता, मैं अमल करूँगी तो बच जाऊँगी इंशाल्लाह, ये मुझे यकीन है। बिल्कुल अल्लाह ने सीधा रास्ता दिखा दिया, सिराते मुस्तकीम है, हक बात हूँ, सही कर रही हूँ, सही मसलक है मेरा, सही सोच है मेरी, बस अब अगर कमी है मेरे जन्नत में जाने की तो वो मेरे अमल है, या मेरा इखलास ना कम हो, या मेरी नीयत में फतूर ना हो। तालीमात में मुझे बिल्कुल अल्लाह के हुक्म से शक नहीं आता, कोई हैंकी पैंकी नहीं, किसी से बात हो रही है उन्होंने कहा दिल में क्यों शक आते रहते हैं, कोई क्या कहता है कोई क्या कहता है, वो बड़ी रवानी में थी और उस वक्त बात का जो फी समाना अंदाज था मुझे भी यही कहना चाहिए था, हाँ वाकई बड़ा शक है, लेकिन मैंने उनकी खिलाफ मर्जी का, मैंने कहा माफ़ कीजिएगा मुझे कोई शक नहीं आता, मैं तो बिल्कुल मुतमईन हूँ, मुझे तो नहीं लगता कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, मुझे बिल्कुल सीधी बात समझ आती है। क्यों? कि जब बंदा जम जाता है ना एक रास्ते में, ये ऐसे ही जैसे अब आप यहाँ से उठ के घर जाएंगे ना, किसी को अपने घर के रास्ते में शक हुआ, यहाँ आने में अब शक होता है? अल्हम्दुलिल्लाह आंखें बंद करके भी चलते हैं, गाड़ियाँ आवाज़ देखें कि खुद ब खुद मुड़ती हैं उधर बातें करते हुए भी, लेकिन पहले दिन आए थे तो शक हो सकता है, इस गली में कि उसमें कभी निशानी रखी होगी, इधर मुड़ना था कि उधर मुड़ना था, तो लिहाजा शुरू में शक आ सकता है, 17 पारों के बाद शक नहीं आता। क्या आप में से किसी के दिल में अभी शक है कि जो तालीम आप ले रहे हैं उसमें शायद कुछ और ही गड़बड़ हो? कोई झगड़े तो क्या करें फिर, रह जाते भी कुछ झगड़े, आप कह रहे हैं आप ठीक हैं, दूसरा कहता है नहीं आप गलत हैं, तो अब क्या करें फिर? कवाइन जा दलू का, और अगर ये फिर भी आपसे झगड़े करें, फिर भी कहें नहीं आप गलत हैं, फिर भी कहें आप ठीक नहीं, तफक्कुलिल्लाहु आलमु बिमा तअमलून, फिर कह दो देखो अल्लाह तो जानता है ना जो तुम कर रहे हो, मेरा तो आखिरी फैसला अल्लाह के आगे है, मेरी सुप्रीम कोर्ट अल्लाह की ज़ात है, मैं अपने आप को भी उधर पेश करता हूँ तुम्हें भी करता हूँ, इस यकीन के साथ के अल्लाहु यहकुमु बैनकुम यौमल क़ियामती फ़ीमा कुंतुम फ़ीही तख्तलिफ़ून, अल्लाह ताला फैसला फरमा देगा तुम्हारे दरमियान क़ियामत के दिन इन उमूर के बारे में जिनमें तुम इख्तलाफ करते रहे हो, बस बात ख़त्म। हमारा तो मामला ही पहले से निपटा हुआ है, हमारे तो फैसले पहले से हुए हुए हैं कि क़ियामत के दिन उसकी सिर्फ अनाउंसमेंट होनी है, हमें तो पता है कौन गलत है, तुम्हें भी पता है मुझे भी पता है क्या ठीक है क्या गलत है, कौन जालिम है कौन मजलूम है, सिर्फ डिक्लेरेशन क़ियामत के दिन होनी है, बात समझे? इस आयत को कोई ये ना समझे कि दुनिया में नहीं पता कि कौन ठीक है कौन गलत है, इसका मफहूम क्या है जो भी आपको मैंने आम लफ्ज़ों में बता दिया कि अल्लाह के पास फैसले लिखे हुए हैं हमें अभी मिलने हैं, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कोर्ट कचहरी में जज जो होते हैं वो फैसला लिख के रख लेते हैं, कहते हैं ये अगली पेशी में बताया जाएगा, बस इस मिसाल से बात समझ लें, अल्लाह को आज भी पता है कि हक क्या है बातिल क्या है, कौन झगड़ रहा है कौन ठीक है कौन गलत कर रहा है, दूध का दूध पानी का पानी होगा, लेकिन तुम्हें क़यामत के दिन पता चलेगा। इस आयत में अल्लाह ताला ने बहुत ही प्यारा एक अदब सिखा दिया बंदों को, और वो क्या कि जो शख्स सिर्फ तासुब और झगड़ा करने के शौक में तुमसे मनाजरा करना चाहे तो उसे कोई जवाब ना दो, खामोश। कीप क्वाइट, चुप, बोलना नहीं है। जो वो के उसके जवाब में सिर्फ एक बात कह दो कि अल्लाहु आलमु बिमा तामलून, अल्लाह देख रहा है जो आप कर रहे हैं, बस यकीन करें कि रंग पीला पड़ जाएगा लोगों का, अगर वाकई खुदा खौफी होगी। फिर दोबारा अल्लाह की कुदरत, अलम तालम अन्नल्लाह यालमु मा फिस समाई वल अर्थ, क्या आप नहीं जानते कि अल्लाह जानता है जो कुछ आसमान और जमीन में। दीजिए जवाब। आप कहें नहीं, हम जानते हैं कि अल्लाह सब कुछ जानता है आसमान और जमीन की चीजों को। इन्ना ज़ालिका फ़ी किताब, जानने के साथ साथ लिखा भी हुआ है। कहाँ? ये सब कुछ एक किताब में लिखा हुआ है। कौन सी किताब है ये? शाबाश, मुझे शक था कि कहीं आप कुरान ना कह दें। लोहे महफूज में अल्लाह को ना सिर्फ पता है बल्कि लिख ली। क्योंकि देखिए लिखत पढ़त क्या है, आप कहते हैं मुझे पता ये बात है, लेकिन बदल भी तो जाएगी ना, भूल भी तो जाएगी ना। लिखी बात कभी नहीं छुटलाई जाती, इसीलिए हमारे दीन में लिखत पढ़त की बड़ी अहमियत है। निकाह करो लिख लो, कोई कैसे कर लो निकाह, नहीं लिखत की जरूरत, कोई जरूरत नहीं दो गवाहों को बिठाने की, कोई जाबो कबूल की बात नहीं। कहा नहीं लिखो बैठ के, तलाक लिखो बैठ के, घर ले रहे हो दे रहे हो लिखो बैठ के। कहा अल्लाह ने लिखा है, ये अल्लाह ने खुद करके दिखाया। कि कोई ये ना कह दे कि नऊज़ बिल्ला अल्लाह ने बाद में बात बदल दी। कहा अल्लाह ने सब कुछ लिखा हुआ है, उसके पास सब कुछ है। हाय इतना कुछ कैसे लिखा होगा, हमसे तो अपनी चार बातें नहीं लिखी जाती, अल्लाह ने इतना कुछ कैसे लिखा होगा। का इन्ना ज़ालिका अलल्लाही यसीर, ये सब कुछ मेरे रब पे बड़ा आसान है। इतनी कुदरत वाला है वो, कितना आसान है। देखिए कि आज टाइपराइटर कैसे चलता है, आज आप एक कॉपी एंड पेस्ट करते हैं वो सफ़ों के सफ़े लिख जाते हैं। किसने सिखाया? रब ने सिखाया। तो क्या वो ये सब कुछ तुम्हारा नहीं लिख सकता? यकीन रखो कि उसने तुम्हारा सब कुछ लिखा हुआ है। एक लम्हे के लिए अपने आप को यकीन दिलाए कि मेरी तकदीर का हर फैसला लिखा हुआ है, तो आप देखेंगे कि आपको एकदम सुकून आएगा। इतना कुछ उसने लिखा हुआ है, इतना कुछ है, तो फिर मुझे किस बात की फिक्र है। इसीलिए हदीस में आता है ना कि अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान की पैदाइश से 50,000 साल पहले, आप देखिए ये काउंटिंग भी अल्लाह क्यों देते हैं कि इससे भी अहमियत पता चलती है लिखत पढ़त की। 50,000 साल के बजाय अल्लाह ताला कुछ ना कहते, ये कहते हैं दुनिया पैदा होने से काफ़ी अरसा पहले, जैसे हम अमूमन बातें करते हैं लमसम, नहीं 50,000 साल पहले अल्लाह ताला ने ये सब किया जब उसका अर्श पानी पर था। सारी मखलूकात की तकदीरें लिखी और उसको लिख के रख दिया। इसी तरह एक दूसरी रिवायत में आता है, ये सही मुस्लिम की रिवायत का खुलासा था, एक और मफहूम में आता है कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले कलम को पैदा किया। अपने हाथ में रखे हुए कलम को देखिए, सबसे पहले कलम पैदा किया, छुरी चमचा कांटा नहीं कि खाओ पियो। फिर उस कलम को कहा उक्तुब, लिख, और उसने कहा अल्लाह क्या लिखूं? अल्लाह ताला ने फरमाया जो कुछ होने वाला है वो सब कुछ लिख दो। चुनाचे अल्लाह के हुक्म से जो कुछ होने वाला था सब कुछ लिख दिया गया। ये अबू दाऊद की रिवायत है। तो क्या पता चला कि सब कुछ लिखा हुआ है और ये सब कुछ उस पे आसान है। लेकिन लोगों की नासमझी देखिए, इतनी कुदरतों वाले रब को छोड़कर वह याबुदून मिन दूनिल्लाहि मा लम युनज्जिल बिही सुल्तानन, और वो पूछते हैं अल्लाह के सिवा उनको जिनके बारे में अल्लाह ने कोई सनद कोई दलील ही नहीं दी। वमा लैस लहुम बिही इल्मुन, और इन्हें तो खुद भी उनके बारे में कोई इल्म ही नहीं। कैसी बातें करते हैं? एक इतने ऑथेंटिक तरीके से लोगों की तकदीरों को बनाने वाले, हर चीज़ को लिखत पढ़त में लाने वाले रब को छोड़कर अटकलों वाली बातें करते हैं, सिर्फ अंदाज़ों पे जीना चाहते हैं। वमा लैस लहुम बिही इल्मुन, जिसका इल्म नहीं, जिसके बारे में कोई यकीन नहीं, सिर्फ तवहमात पे जीना चाहते हैं, तो जाएं फिर शौक से जी लें। क्योंकि वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन नसीर, और नहीं होगा जुल्म व सितम करने वालों का कोई मददगार। इशारा है उस दौर के मुशरिकों और आज के मुशरिकों के बारे में कि जो अल्लाह की ज़ात को छोड़कर इतने अजीबो गरीब तरीके से मन पसंद चीज़ों को पूछते हैं, वही लात मनात उज़्ज़ा यौक यगूस नसर की तरफ। और जब अल्लाह के नबी की ज़ुबान से कोई ऐसी बात सुनते कि जिसकी ज़द इनके बुतों पे और इनके रस्म व रिवाज पे पड़ती, तो क्या होता? वह इज़ा तुतला अलैहिम आयातुना, और जब इन पर तिलावत की जाती हैं हमारी आयतें, साफ साफ खुली आयतें, क्लियर क्लीन तौहीद वाली आयतें, तारीफ़ु फ़ी वुजूहिल्लज़ीना कफ़रुल मुनकर, तो आप पहचान लेते हैं कुफार के चेहरों पर नापसंदीदगी के आसार, आज भी दिखते हैं। ईमान वाले तो जोश में आके उनको कुरान की बातें सुनाते हैं, देखो तौहीद की बात, देखो इस्लाम की बात, देखो शिर्क की बात। इतनी मिठास, इतनी शीरीनी इस कलाम में, ईमान वालों के रगो रेशे में चली जाती है। लेकिन वो लोग जो अपनी पसंद की ज़िंदगी बसर करते हैं, उनके चेहरों पे नागवारी आती है। लफ्ज़ मुनकर जो है ना, मुनकर, अब यहाँ से फ़र्क फिर देखें फ़ाइल मफ़ूल का, ये है मुनकर और एक लफ्ज़ होता है मुनकर। कर और किर के, कर यानी तू कर, मफ़ूल है, और मुनकर खुद करने वाला, फ़ाइल और मफ़ूल का फ़र्क बता रही हूँ। ये लफ्ज़ जो होता है ये अरबी ज़ुबान में अलगज़ब गुस्से, अल अबूस तेवरियाँ चढ़ानी, अबस वतवल्ला में हम पढ़ते हैं, नागवारी नाराज़गी में आता है कि ये लोग गज़ब में आ जाते हैं इन आयतों को सुनकर और नागवारी में आते हैं। क्या आज भी कोई ऐसा होता है कि जो कुरान की सही आयतों को सुनकर भी तेवरियाँ चढ़ा ले? बहुत सारे, किसी के शिर्क पे चोट डाल के देखिए लोगों की ये हालत आप देख सकते हैं। और ये तो उनके अंदर की हालत ही, जाहिर क्या करते हैं, यकादू न यस्तू न बिल्लजी न यतलू न अलैहिम आयातिना, और यूं पता चलता है कि वो अनकरीब झपट पड़ेंगे इन लोगों पर जो पढ़ते हैं इनके सामने हमारी आयतें। अल्लाह अकबर, आप शिरकी आयतों को ले जाएं, सारी आयतें जमा करके जिसमें शिरक और बुतों की बात है, और किसी मज़ार या कब्र वाले को सजदा करते हुए को उनके सिर्फ मफहूम बताएं, कहेंगे निकाल लो इसको, ये वहाबी आ गया कहीं से। यूं आते हैं, यस्तून का लफ्ज़ देखिए, शिद्दतुल बत्श को कहते हैं डिक्शनरी में, शिद्दत के साथ पकड़ना, कि इनको जुर्रत कैसे हुई कि हमारे बारे में बात करें, आ गया होगा। और ऐसे लोग आप देखिए कि कभी दलाइल में बात नहीं करेंगे, भाई गुस्सा किस बात के, आप भी को आयत बता दें, नहीं, कहते हैं पकड़ो इनको, निकालो इधर से, इनसे एक सवाल पूछ लीजिए, कुल अफा उनब्बियुकुम बिशर्र मिन ज़ालिकुम, ए गुस्सा करने वालों, ए ऐसे मुवाहिदों से लड़ने झगड़ने वालों, क्या मैं तुमको खबर ना दूं इससे भी तकलीफ दे चीज़ पर? ये जालिकुम क्या इधर, ये तुम्हारा गुस्सा खाना अपने माबूदों की बातों का, शिरकिया बातें जो तुम्हें इतनी बुरी लगती हैं, कुरान की आयतें सुनकर जो तुम्हारा दिल डूबने लगता है, तुम्हारी तबीयत में खुलक और इजतराब की लहर दौड़ती है, तुम्हारी पेशानियों पर बल पड़ने लगते हैं, क्या तुम्हें पता है कि कल तुम्हारा वास्ता एक ऐसी चीज़ से पड़ने वाला है जो इससे भी खतरनाक है, इससे भी तकलीफ़ है, और वो क्या है? अन्नार, आग, जहन्नम की आग, जिसको हर लम्हे तेज़ किया जा रहा है, जिसके शोले तुम्हें भस्म करने के लिए तड़प रहे हैं, वो दोज़ख़ की आग है। कभी सोचा तुमने, वादहल्लाहुल्लज़ीना कफरू, अल्लाह ने वादा किया उसका हा क्या इधर, अन्नार, उस आग का वादा अल्लाह ने काफिरों से किया है। कह सकता है कोई कि फिर भी काफिर आग में नहीं जाएंगे, फिर भी दोज़ख़ सिर्फ़ एक ख्याल ही है, सिर्फ़ एक तमसील है? आज के दौर में लोग जन्नत और जहन्नम का भी इनकार कर रहे हैं। इस आयत को कोट कर लें, वमन अस्तकु मिनल्लाहि क़ीला वमन अहसनु मिनल्लाहि हदीसा, अल्लाह से सच्ची, अल्लाह से अच्छी बात किसकी है? वो कह रहा है मैंने काफिरों से वादा किया आग में डालने का, वबिसल मसीर, बड़ा बुरा है वो ठिकाना, अल्लाह ना करे कोई दुश्मन भी उसमें जाए, एक दफ़ा चला गया लग पता जाएगा, उनको पता चल जाएगा कि किस तरीके से अल्लाह ताला ने इनको ये बात समझा दी। यहाँ तक असल में अगली आयतों की तमहीद है। अब यहाँ से सूरत के आखिर में वाकई आप कह सकते हैं कि दिल को मोहने वाली आयतें और दिल को मोहने वाला अंदाज़ है। तिलावत सुन के अगली आयतों के लिए तैयार होते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि शिर्क और शिर्क की सारी कबाहतों से हमें महफूज रखे।
أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُونَ وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس له به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير